आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने भारत टेक्स 2025 में लिया हिस्सा, कहा देश की सांस्कृतिक विविधता यहां के वस्त्रों में झलकती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल दो दिवसीय दौरे पर श्योपुर पहुंचे, पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के लिए उच्च स्तरीय समिति की जांच शुरू। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का प्रदेश के 352 केंद्रों पर हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 में हिस्सा लिया। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि फॉर्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन एक मिशन बन गया है और ये भारत के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। भारत टैक्स 2025 एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है। इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश है। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में भारत का निर्यात वर्तमान में 3 लाख करोड़ रुपए है और इसे 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता देश के विभिन्न भागों में बनने वाले वस्त्रों में झलकती है।
भारत टेक्स के इस आयोजन में हमारे परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कितने तरह के पारंपरिक परिधान है, एक एक परिधान के कितने कितने प्रकार है। ये सही समय है ऐसे आयोजनों के जरिए हमारी ये विविधता और विशेषता वस्त्र उद्योग के विस्तार का भी माध्यम बने।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में जनजाति लोगों की परंपराएं और जीवन शैली देश की संस्कृति को समृद्ध करती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में आदिवासी कल्याण के लिए आवंटन राशि में 3 गुना वृद्धि की गई है। आदिवासी समाज का उत्थान होगा तभी देश विकसित होगा। आदि महोत्सव का उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की जीवन संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का उत्सव मनाना और उसे प्रदर्शित करना है। इस महोत्सव में 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, शिल्पकार और 500 कलाकार भाग ले रहे हैं। महोत्सव में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाए गए हैं जो वहां की खाद्य परंपराओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज श्योपुर के आदिवासी विकासखंड कराहल के ग्राम पनवाड़ा में पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुसूचित जनजाति के उत्थान और उनकी बुनियादी सुविधाओं में और अधिक बढ़ोतरी के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की है। राज्यपाल ने सहरिया महिला लघु वनोपज प्रोड्यूसर कंपनी वन विभाग अंतर्गत पीएम वन धन केंद्र कराहल द्वारा जड़ी बूटियों के संग्रहण कार्य पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राज्यपाल ने पीएम आवास योजना अंतर्गत 5 हितग्राहियों को आवास की चाबी भेंट कर गृह प्रवेश कराया। राज्यपाल श्री पटेल कल ग्वालियर जिले के ग्राम झीमक में मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के तहत हितग्राहियों को पशु आहार वितरित करेंगे और ग्राम चेत में पीएम जनमन आवासों का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीआईएस में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करने राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 जारी की है। पॉलिसी के नवाचारों से लॉजिस्टिक लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में दक्ष, विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से स्थायी विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है जिससे वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम किया जा सके। इससे प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए आकर्षक स्थल बन सकेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की जांच उच्च स्तरीय समिति ने शुरू कर दी है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नई दिल्ली के लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के हेल्पलाइन नंबर 9873617028 और 0112350127 है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि हादसे के शिकार पीड़ितों के लिए रेल मंत्रालय ने मुआवजे की घोषणा की है, जिसके अनुसार मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5-2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है।
रेलवे द्वारा मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और मुआवजा वितरित भी किया जा रहा है। और जो मृतक दूर क्षेत्रों के रहने वाले हैं उनको डेड बॉडी भेजने के लिए रेलवे का एक स्टाफ ही उनको अकंपनी कर रहा है।
महाकुंभ के दौरान आने जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए मैहर जिले में बनाए गए अस्थायी कैंप खेरवासानी और झुकेई को आज जिला कलेक्टर रानी बाटर ने निरीक्षण किया। इस दौरान यात्रियों के खाने पीने और विश्राम संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसी तरह सतना में रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने सतना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित आवागमन के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 आज 18 विभागों के 158 प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो सत्रों में आयोजित की गई। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग को 1,18,000 आवेदन मिले। इनके लिए 52 जिलों में 342 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए आयोग ने इस बार रिटायर्ड पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को ऑब्जर्वर बनाया था। शिवपुरी में 4 केंद्रों पर यह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के लिए डिप्टी कलेक्टर विजेंद्र यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया था। यहां पर 1,264 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। जबलपुर में कुल 7,610 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की गई। शहर में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए। धार में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 7 केंद्रों पर किया गया। इसमें कुल 1,583 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। गुना जिला मुख्यालय के 5 परीक्षा केंद्रों पर 1,411 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने आज हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के लगभग 14,50,00,000 रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण ग्राम पंचायत केलोद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि जनता की समृद्धि का द्वार होता है। उन्होंने हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी की मांग पर देवास से डबल चौकी तक 83 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री राम की परंपरा से जुड़ने वाले लोधा समाज ने अपने संस्कारों, परिश्रम और पराक्रम से प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर ही देश में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की गई है। जिला शिक्षा केंद्र नर्मदापुरम के नवाचार सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ को कल दिल्ली के हैवीवेट सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। सागर जिले में पिछले 10 दिनों में जिले के 50,000 से अधिक किसान फार्मर रजिस्ट्री करा चुके हैं। समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन के लिए पंजीयन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य में फार्मर रजिस्ट्री की आवश्यकता को देखते हुए अब किसान खुद इस कार्य में रुचि ले रहे हैं। खंडवा जिले में किसानों को उच्च गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध हो सके इसके लिए कृषि विभाग द्वारा उर्वरक, बीज, कीटनाशक के नमूने लिए जाकर विश्लेषण के लिए प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं। रायसेन जिले के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कल जिला स्तरीय युवा संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह युवा संगम मेला ग्रेफाइट हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीदीप में सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। और सीहोर जिले में आज उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में सीहोर जिले में 24,160 नव साक्षर इस परीक्षा में शामिल हुए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।